सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है।
ओम शांति। सभी थक तो नहीं गए हैं? ऐसा तो नहीं कि बारिश के कारण अब अंदर बैठना ही पड़ेगा? बारिश नहीं होती तो इधर उधर थोड़ा हो जाते थे, ऐसे तो नहीं है ना? हाँ, पढ़ने के मौके कभी कभी आते हैं, है ना? पढ़ाई छोड़ने के बाद शायद ये दो दिन होंगे जो इतना आप पढ़े होंगे। घूमने के मौके, अनेकों से मिलने के मौके तो सदा मिलते रहते हैं लौकिक जीवन में भी, लेकिन खुद के लिए पढ़ाई करने का कभी कभी मौका मिलता है। आज हम अपनी आंतरिक शक्तियों का संतुलन कैसे करना है इस विषय पर देखेंगे। अब आपने अपने आंतरिक जगत को जान लिया है कि हम स्वयं वो चैतन्य शक्ति हैं, और कुदरती कौन से खजाने हमें प्राप्त हुए हैं। शास्त्रों में एक कहानी है कि ब्रह्मा जी ने इंसान को हर बात सिखाकर, समझाकर, हर रीति से होशियार बना करके मनुष्य लोक में भेजा, और मनुष्य ने भी बहुत ही अच्छी उन्नति की। वो आकाश को भी छूने लगा, पहाड़ों की शिखर पर भी पहुंच गया, सागर की गहराई भी उसने नाप ली। माना जहां देखो वहां इंसान पहुंच गया। ये देख करके ब्रह्मा जी ने भगवान को कंप्लेन की कि मैं देखता हूं जहां जाता हूं वहां इंसान पहुंच गया है। संसार का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां इंसान की पहुंच ना हुई हो, तो अब मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं रही। तो भगवान उसको कहते हैं कि नहीं, एक ऐसा क्षेत्र है जहां इंसान की पहुंच नहीं हुई है, और वो है उसका अपना ही आंतरिक जगत, उनका अपना ही स्वरूप जहां पर उसकी पहुंच नहीं हुई है। वो आकाश में भी पहुंच गया, पहाड़ों पर भी पहुंच गया, समुद्र की गहराई में भी पहुंच गया, और ग्रहों पर भी पहुंच गया, लेकिन उसकी अपने आप से पहुंच नहीं है। और बिल्कुल ये बात सही है। अब हम इसको रियलाइज करते हैं कि हमारी अपने तक पहुंच नहीं है, और वो आंतरिक जगत क्या है जिसके लिए हम सदा कहते रहे हैं। कवि रविंद्रनाथ टैगोर की ये कविता है प्रार्थना, जिसमें उन्होंने कहा है कि अंतर मम विकसित करो, निर्मल करो, उज्जवल करो। तो वो हमारा अंतर क्या है, अंदर में क्या है? तो वो है हम स्वयं चैतन्य शक्ति, जो इस शरीर के मस्तक में स्थित है, और उस आत्मा के अंदर, उस आंतरिक जगत के अंदर मुख्य चार योग्यताएं हैं, शक्तियां हैं, विशेषताएं हैं, खजाने हैं, जो हम सबको प्राप्त है: विचार, शब्द, कर्म। आत्मा के अंदर ये तीनों निहित है, इसलिए ओम शब्द आपको अर्थ बताया होगा। ओम शांति जो यहां कहते हैं उसका अर्थ है आत्म शांति। ओम का अर्थ है मैं स्वयं आत्मा। और इसलिए ओम शब्द में हमारी ये तीनों संपत्ति, तीनों एसेट्स, तीनों खजाने उसमें बताए हैं, अ, उ और म। अ मीन्स आचरण, एक्शन। उ मीन्स उच्चारण, अटरेंस। और एम, म मीन्स मन, माइंड, विचार। तो ये विचार करने की, शब्द उच्चारण करने की और कर्म करने की योग्यताएं जिसमें है वो है अंतर जगत, हम स्वयं चैतन्य शक्ति आत्मा। और कोई भी चीज को, और यही आपने रियलाइज किया होगा कि उस अंतर जगत में हमारे अपने अंदर ही अंधेरा था और इसलिए हम बाहर खोजते रहते। वो कहानी आपको बहनों ने बताई होगी कि चाबी गुम कहाँ हुई थी और खोज कहाँ रही थी। चाबी गुम और जगह हुई और वो लाइट के नीचे खोज रही थी, उससे पूछा कि भाई चाबी कहाँ गुम हुई है, मैं आपको मदद करती हूँ ढूंढने में। तो कहा गुम तो वहां हुई है। तो बोला आप यहाँ क्यों खोज रही? तो बोला यहाँ लाइट है, वहां अंधेरा है। तो हमारे अंदर अंधेरा है अज्ञान का, हम जानते नहीं है इसलिए बाहर खोज रहे हैं, है ना? वो प्रकाश अब परमात्मा हमें दे रहे हैं। देखो इस चीज को मुझे अच्छी तरह से देखना है तो दोनों प्रकार के प्रकाश की आवश्यकता है, ये बाहर की लाइट भी चाहिए और इन आंखों में भी रोशनी चाहिए, तभी मैं इस चीज को अच्छी तरह से देख सकती हूँ। बाहर का प्रकाश है पर आंखों की रोशनी नहीं है तो मैं नहीं देख सकती हूँ। इसलिए जीवन की हर बात को, हर परिस्थिति को, हर व्यक्ति को यथार्थ रूप से समझने के लिए हमारे अंतर जगत में प्रकाश मीन्स आध्यात्मिक ज्ञान की भी आवश्यकता है। भौतिक ज्ञान, संसार का ज्ञान, जगत का ज्ञान हमारे पास है, सारे दुनिया भर की इंफॉर्मेशन अब तो हमें घर बैठे मिल रहे हैं, टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, ईमेल के द्वारा, अखबार, रेडियो के द्वारा, गांव-गांव, गली-गली, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। लेकिन आवश्यकता है अब अंदर के सत्य ज्ञान की, और वो भी अब परमात्मा हम आत्माओं को दे रहे हैं। मैं एक प्रैक्टिकल अनुभव की बात आपको सुनाना चाहूंगी कि आंतरिक ज्ञान और आंतरिक परिवर्तन के बिगैर बाह्य सब कुछ करने पर भी हमें सफलता नहीं मिलती है। एक बार हम ईश्वरीय सेवा के लिए एक सेंट्रल जेल में गए थे, वहां कार्यक्रम रखा गया था और हम बहनों को वहां आमंत्रित किया था। अभी तो काफी जेल में ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग के कार्यक्रम चलते हैं, तो एक सेंट्रल जेल में हम गए थे और सभी कैदियों को सभा में बुलाया गया था। हम लोगों ने उन्हें ईश्वरीय ज्ञान दिया, राजयोग का अभ्यास कराया, कार्यक्रम पूरा हुआ और वो जेलर साहब हमें वो जेल दिखाने के लिए ले गए। जब हम अंदर देखने गए तो कुछ कैदी ऐसे थे जो अभी भी जेल में बंद थे सलाखों के पीछे, उनको सभा में नहीं बुलाया गया था। तो हमने उस जेलर साहब से पूछा कि आपने सभी कैदियों को सभा में बुलाया इन कैदियों को आपने क्यों नहीं बुलाया? तो उन्होंने कहा कि ये जो कैदी हैं, ये इतने मतलब पक्के गुनाहगार है कि अगर हम इसको बाहर निकालें और कुछ भी गड़बड़ हो जाए, इसलिए हमने उसको बाहर नहीं बुलाया। हमने उस कैदी भाई से बात की जो ऑलरेडी कैद में बंद था। हमने कहा कि भैया, आप तो बड़े हेल्दी दिख रहे हैं, सशक्त दिख रहे हैं, आप क्यों नहीं मेहनत करके खाते हैं, जीवन गुजारा करते हैं, क्यों आप चोरी करते हैं, गुनाह करते हैं? तो वो कैदी ने हमें क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया होगा? जो ऑलरेडी कैद में बंद था, उस कैदी ने हमें कहा, आप शायद सोच भी नहीं सकते हैं, उसने कहा कि बहन जी, चोरी भी कहां बिगर मेहनत होती है, चोरी करने में भी तो मेहनत लगती, मैंने इतनी सजा खाने पर भी और ऑलरेडी सजा की स्थिति में होने पर भी उस व्यक्ति को ये रियलाइजेशन नहीं है कि चोरी करना गलत है। तो हमें ये समझ में आया कि सचमुच हम बाहर के कायदे कानून से व्यक्ति की अनैतिक प्रवृत्ति को कुछ समय के लिए हम रोक सकते हैं, लेकिन व्यक्ति की जो अनैतिक मनोवृत्ति है उसको हम निर्मूल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए तो आवश्यक है कि वो सत्य ज्ञान उसको दिया जाए, जिससे उनको वो रियलाइजेशन आए और वो अपनी वृत्तियों को बदले। और वो बात हम सबको भी लागू होती है कि कायदे कानून तो कहां तक पहुंच सकेंगे। प्रैक्टिकल दुनिया में आप रहते हैं और देखते हैं कि गवर्नमेंट जितने कानून बनाती है, लोग उतने ही उसको तोड़ने के रास्ते भी निकाल लेते हैं। इसलिए वृत्तियों के परिवर्तन की आवश्यकता है, अपने आंतरिक जगत में कुछ चेंज लाने की आवश्यकता है। और अब तक जो आपके चारों ही संपत्ति के सेशन चल चुके, संकल्प, शब्द, कर्म, इनके बारे में आपने समझ लिया है, और टाइम की जो संपत्ति है वो इन तीनों से जुड़ी हुई है ना। मन, वचन, कर्म अगर मेरे सफल है तो ऑटोमेटिक मेरा टाइम भी सफल है, और अगर ये तीनों वेस्ट है तो टाइम तो ऑटोमेटिक वेस्ट हो जाता है। इसलिए हम यहां पर ये सिखाते हैं कि अगर आप टाइम को मैनेज करना चाहते हैं तो सेल्फ को मैनेज कर लीजिए। सेल्फ को मैनेज करेंगे तो टाइम तो ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगा। इसलिए हमें अपने इन तीनों खजानों पर अटेंशन देना है, और अब तक जो हमारा जीवन चला है, किसी भी क्षेत्र की व्यक्ति हो, अब तक हम सबका जीवन जो चला है उसमें तो रिजल्ट यही है कि हमने लाइफ के हिसाब से, कर्मिक अकाउंट के हिसाब से तो खोट का ही धंधा किया है ना। बहुत कम हमारा जमा हुआ है और बहुत जास्ती हमारा वेस्ट हुआ है। इसलिए लाखों का, करोड़ों का बिजनेस करने वाले भी और लाखों करोड़ों को जमा करके बैलेंस करने वाले भी अपने आंतरिक जीवन के अंदर और कर्मिक अकाउंट के अंदर तो खोट का ही हिसाब लेकर के बैठे हुए हैं, और जिसके सिर पर उधार हो खोट हो नेचुरली वो शांति से नहीं जी सकता है, उसे टेंशन भी रहेगा और चिंता भी रहेगी, है ना। और हम सब चिंता और टेंशन में है, इसका अर्थ क्या हुआ? आज हमारे में से कोई भी बाकी नहीं है जिसको चिंताएं ना हो टेंशन ना हो, तो वो क्या सिद्ध करता है कि हमने अंदर से खोट का ही धंधा किया है और काफी उधार हमारा है, इसलिए हम टेंशन में है, चिंता में है, सतत भय के अंदर है। हमें जागते हुए सोते हुए स्वप्न में भी दुकान और ग्राहक हिसाब और किताब ही अगर दिखाई दे रहे हैं तो ये क्या सिद्ध करता है कि हमारा बैलेंस ठीक नहीं है। इसलिए अब हम वो देखेंगे कि कैसे हमें बैलेंस करना है। कई सोचते होंगे कि बहन जी कई बातों में हम बहुत अच्छे हैं, लोगों को प्यार से चलाते हैं, फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती है। हम घर में बहुत सारा ही काम करते हैं लेकिन फिर भी हमें यश नहीं मिलता है। हम प्रेम से चलते हैं लेकिन फिर भी हमें ही धोखा मिलता है। तो हमारे अंदर अच्छाइयां हैं, वैल्यूज हैं, मैनर्स हैं, हम त्याग भी करते हैं लेकिन इन सब के बावजूद भी हमें सक्सेस नहीं मिलता है। तो किसके साथ किस गुण और शक्ति का बैलेंस करना जरूरी है वो अब हम देखेंगे। तो एक एक एग्जाम्पल, मैं 6 एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगी। सबके बीच में आंतरिक जगत माना हम स्वयं चैतन्य शक्ति, और हमारे 4 खजाने विचार, शब्द, कर्म और समय, ये 4 हमारे खजाने हैं। तो सबसे पहले हम विचार और शब्द के अंदर कैसे हमें बैलेंस लाना है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखती हूं। शब्द और विचार के अंदर कहां कैसा बैलेंस लाना है? मान लीजिए आपके स्टोर में, आपकी दुकान में एक व्यक्ति है और वो बार बार एक ही गलती करता है, और आपको कोई विशेष कार्य एक निश्चित समय में पूरा करना है, तब इसमें उपयोग किए हुए शब्द और विचार दोनों शक्तियों का संतुलन कैसे करना है? मैं समझती हूं आपके सामने ये प्रॉब्लम जरूर आता होगा कि आप अपने कर्मचारी को, साथी को, अपने कारीगर को बार बार सिखाते हैं फिर भी बार बार वो व्यक्ति गलती करता रहता है, और आपने जो विशेष ऑर्डर लिया है काम करके देने के लिए बोला है वो एक टाइम लिमिट के अंदर आपको करना है, तो यहां आप कैसे अपना बैलेंस करेंगे? नेचुरली वो व्यक्ति गलती करता है इसलिए आप उसको करेक्शन देंगे, शब्द से उनको समझाएंगे, सुधार देंगे कि देखो आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको कितनी बार सिखाया आप इस ढंग से करिए, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिलता है तो क्या बैलेंस करना होगा, कहां हमें बैलेंस लाना होगा? क्योंकि कारीगर आपके पास वो ही है, आपको करेक्शन भी देना है, आप दे भी रहे हैं, लेकिन साथ साथ कौन सी विचारों के अंदर आप गुण धारण करें ताकि आपका करेक्शन देना उसको बुरा भी न लगे और वो ठीक से काम करने लगे और आप निश्चित समय पर वो काम कंप्लीट करने लगे। तो उसके लिए चाहिए आपके शब्दों में सुधार हो, क्योंकि आप रेस्पॉन्सिबल हैं, हेड हैं, तो आप उसको करेक्शन दें, लेकिन अपने विचारों में आप क्षमाशीलता रखें। मन के अंदर फॉरगिवनेस, ताकि उसको लगेगा कि ये मुझे करेक्शन दे रहे हैं, लेकिन उसकी मेरे प्रति घृणा की भावना नहीं है, अंदर से दिल से वो मुझे माफ भी कर रहे हैं। अगर ये बैलेंस आप अपनी पर्सनालिटी में लाएंगे, मीन्स उसकी भूल, उसकी गलती चित पर नहीं रख, ठीक है इंसान है, कोई परफेक्ट कोई भी नहीं है, आज वो ये भूल कर रहा है, मैं अपनी लाइफ में और कोई भूल कर रहा हूं, और हम भी अपने जीवन के अंदर महसूस करते हैं कहीं पर कि चाहते हुए समझते हुए भी हम नहीं सुधरते हैं। इस प्रकार ये भी व्यक्ति है जो इस बात में नहीं सुधर रहा है, तो हम शब्द से उनको करेक्शन दें, लेकिन उसकी वो गलती भूल चित पर नहीं रखें, दिल से आप उसको माफ करते चले, तो दिल का जो क्षमा भाव है वो उसको टच होगा और आपको सक्सेस मिलेगा। जैसे हम भगवान के रिलेशन में सदा ये प्रार्थना करते हैं, आप सब भी वो भजन गाते हैं और प्रार्थना में कहते हैं भगवान को कि हे भगवान मोरे अवगुण चित न धर, कहते हैं ना भगवान को, हम कहते हैं कि हे भगवान मेरे अवगुण आप चित पर नहीं धरना, मैं तो ऐसा ही हूं, लेकिन आप मेरे पर तरस करना और मुझे माफ करना। तो इसी प्रकार आज वो कारीगर मेरे पास है, मैं उनके सामने एक मालिक हूं या बड़ा हूं, तो जैसे भगवान के अंदर क्षमाशीलता है, हम भी अपने अंदर वो क्षमाशीलता दिल में रखें, तो वो दिल की क्षमाशीलता ही उसको रियलाइजेशन दिलाएगी और उसका परिवर्तन होगा। तो यहां हमें कि शब्द से हम करेक्शन दें, लेकिन मन में वो न रखें, मन में उसे माफ कर दें, क्षमा कर दें। तो यहां आप देखिए ट्रांसपेरेंसी में विचार और शब्द में एक नंबर जहां लिखा है कि शब्दों से करेक्शन दें और विचारों के अंदर क्षमाशीलता रखें। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको देती हूं, विचार और कर्म के अंदर कहां बैलेंस करना है। एक साइकोलॉजिस्ट है, मान लो एक डॉक्टर है, और उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, वो बहुत ही सफल है, परंतु उससे और एक ऑफर मिलती है समाज के तरफ से कि भाई आप अपनी निशुल्क सेवाएं हमें भी दीजिए, है ना। वो व्यक्ति अपने प्रोफेशन में बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन उसे समाज के तरफ से और ऑफर मिलती है कि आप थोड़ा टाइम हमें भी दीजिए और हमारी संस्था में आकर आप फ्री ऑफ चार्ज सेवा दीजिए, उससे रोगियों को अधिक प्रेरणा देने का अवसर आपको मिलेगा। तो वो सही निर्णय लेने के लिए अपने विचार और कर्म दोनों शक्तियों का संतुलन कैसे करेगा, क्योंकि वो अपने मन से सेटिस्फाइड, क्योंकि वो अपनी प्रैक्टिस में सफल है, बहुत अच्छा कमा रहा है, उसे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सेटिस्फाइड है अपनी प्रैक्टिस से, अपनी कमाई से। लेकिन उसे ये और एक मौका मिल रहा है, तो उसे अपने कर्म के अंदर क्या बैलेंस लाना चाहिए, क्या लाना चाहिए? संतुष्ट है लेकिन जीवन में, हाँ, तो उत्तर है कि वो अपने मन से संतुष्ट है, अपने जीवन की वर्तमान स्थिति से, अपनी प्रैक्टिस से, अपनी कमाई से। लेकिन हमें अपने जीवन में, कर्म में सदा एम्बिशियस बनना चाहिए, आकांक्षी बनना चाहिए। बेशक लोभ की बात नहीं है, लेकिन व्यक्ति को जो है उससे सेटिस्फाई रहते हुए और आगे बढ़ने की और अधिक करने के लिए उसे एम्बिशियस बनना चाहिए, आकांक्षी बनना चाहिए। जैसे हम अपने लाइफ से सेटिस्फाई है कि भाई हम पवित्र हैं, योगी हैं, सेवा भी कर रहे हैं, हमारा जीवन सक्सेसफुल है, लेकिन मुझे इतने से नहीं रुकना है, मुझे और अधिक ऊंचाई को प्राप्त करना है, मुझे और संपूर्ण पवित्र बनना है, परफेक्ट योगी बनना है, और मुझे मैक्सिमम सेवा भी करनी है। तो कर्म में एम्बिशियस बने, लेकिन मेंटल लेवल पर हम जो हैं, जहां हैं, उसमें सेटिस्फाई भी रहे। अगर ये बैलेंस आप अपने जीवन में लाएंगे तो आप निष्क्रिय भी नहीं बन जाएंगे और अति इच्छाओं के वश भी नहीं हो जाएंगे, आप एक्टिव भी रहेंगे और सेटिस्फाई भी रहेंगे। तो ये बैलेंस इस साइकिल में दिखाया है, विचार और कर्म के एरो को देखिए कि विचार में सेटिस्फेक्शन हो, मेंटल स्टेट हमारी हर हालत में सेटिस्फाइड रहे, लेकिन कर्म से हम उद्यमी बने, आकांक्षी बने, और हम आगे ही आगे, नया ही नहीं, नया ज्यादा ही ज्यादा करते जाएं, प्रोग्रेस करते रहें। अब तीसरा मैं आपके सामने एग्जाम्पल दूंगी समय और कर्म के हिसाब से, कि समय और कर्म में हमें कैसे बैलेंस लाना है। यहां एग्जाम्पल दिया है कि जब मैं अपना कार्य स्नेह से करता हूं, प्यार से करता हूं, तब अन्य उसका फायदा लेते हैं। आप सोचते होंगे कि यहां आप कहते हैं कि प्यार से काम करो, प्यार से काम करो, लेकिन दुनिया में प्यार से चलते हैं लोग, काम ही नहीं करते हैं। तो वो एग्जाम्पल है कि जब मैं अपना कार्य स्नेह से करता हूं तब अन्य उसका फायदा लेते हैं। ऐसे समय हमें क्या क्रोधित होना चाहिए, गुस्सा करना चाहिए? क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि बहन जी गुस्से बिगर काम नहीं चलता है, गुस्सा नहीं करते हैं लोग कंट्रोल में नहीं रहते हैं, काम नहीं करते, प्यार से चलाते हैं तो लोग हमारा फायदा लेते हैं, काम नहीं करते हैं। यदि हम क्रोधित होते हैं, अर्थात हम आदर्श स्वरूप नहीं बन पाते, गुस्सा करते हैं तो लोग यही कहेंगे देखा ये बहुत गुस्सा करता है ना, हमारा हम एक एग्जाम्पल नहीं बन पाते हैं। यदि हम अपने समय की व्यवस्था करते हैं तो सबके लिए प्रेरणा बन सकते हैं। तो इसमें समय और कर्म दोनों शक्तियों का संतुलन कैसे करें? कर्म में तो आप प्यार से करा रहे हैं, लेकिन साथ साथ समय के हिसाब से आप क्या बैलेंस लाएं ताकि आप प्यार से कहते हैं, प्यार से कराते हैं तो भी लोग एक्यूरेट काम करके दे। समय के हिसाब से आपको क्या बनना चाहिए? काम प्यार से कराइए, टाइम के हिसाब से आप क्या बने, कौन सा बैलेंस आप लाए? तो उत्तर है कि हमें अपने समय के साथ कायदे से चलना होगा, डिसिप्लिन, कि भाई 2 घंटे के अंदर है ना आपको ये काम करके देना। हम आपको प्यार से काम, कर्म में स्नेही, कर्म में हम सबको प्यार से चलाते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति अलबेले बन जाए, केयरलेस हो जाए। इसलिए उनको टाइम लिमिट दे दो, टाइम में आप डिसिप्लिन रहो कि देखो हमें कल तक ये काम कर देना है, ठीक है, आप सब करके पूरा कर दीजिए। तो व्यवहार में आप लवफुल रहे, लेकिन टाइम के हिसाब से लॉफुल डिसिप्लिन रहे। तो ये बैलेंस अगर हम अपने में लाते हैं तो हम अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां बताया है कि कर्म में प्यारापन, लवफुल एंड टाइम के अंदर कायदा, लॉफुल डिसिप्लिन, है ना, कि भाई आज का काम आज ही करना है, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है ना। व्यवहार प्यार का हो लेकिन टाइम के हिसाब से डिसिप्लिन, कि भाई काम पहले, वो काम आपको टाइम से करना होगा। अब हम चौथा एग्जाम्पल समय और शब्द का, कि हम समय और शब्द में कैसे बैलेंस लाएं ताकि हमें सफलता मिले। ये एग्जाम्पल दिया है कि एक मालिक ने अपने ऑफिस में ओपन डोर पॉलिसी अपनाई है, वो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध रहते, मैंने कभी भी आप जाकर के उससे मिल सकते हैं, ओपन डोर पॉलिसी, वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए अवेलेबल रहते हैं। परंतु कुछ समय के बाद लोग उसकी इस पॉलिसी से प्रसन्न नहीं, इतना टाइम वो दे रहा है, जब चाहिए वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए, लोगों के लिए उपलब्ध रहता है, लेकिन इतना टाइम देने के बाद भी लोग उनसे प्रसन्न नहीं है, उसका कारण क्या होगा? हाँ, टाइम वो दे रहा है, शब्द में क्या वो धारण करे, टाइम में वो जनरस है, उदार चित्त है, उदार चित्त के सामने शब्द में कठोरता नहीं। और तो यहां बताया है कि टाइम बहुत वो दे रहा है, लेकिन सुनने से ज्यादा बोलता था, है ना, टाइम देता है लेकिन ज्यादा ही वो लोगों को बोलेगा, सुनाएगा, करेक्शन देगा, डांटेगा, और हमेशा लोगों को अपनी बात मनवाने की ही कोशिश करता था। इसलिए समय देने में उदार चित, लेकिन शब्दों को प्रयोग करने में इकोनॉमिकल बनना चाहिए। व्यक्ति टाइम दे लेकिन बहुत ज्यादा बोल बोल करें, अपनी ही सुनाएं, अपनी ही मनवाएं, करेक्शन ही देता रहे, तो नेचुरली लोग कहेंगे कि भाई इससे तो ये हाजिर ना रहे तो अच्छा है, है ना? तो हमें टाइम में अगर हम जनरस हैं तो शब्द हमें उचित बोलने चाहिए या योग्य मात्रा में बोलने चाहिए। वहां बैठे रहे, हाजिर रहे और बार बार टोकते रहे, बोल बोल करते रहे अपने हिसाब से ही लोगों को चलाने की कोशिश करेंगे तो आप प्रिय नहीं बन सकेंगे टाइम देते हुए भी। इसलिए समय के हिसाब से उदार चित्त, जनरोसिटी, लेकिन शब्द के हिसाब से मितव्ययिता मीन्स इकोनॉमिकल आपको बनना होगा कि आप हाजिर रहें, टाइम दें, लेकिन आप अपनी पोजीशन के हिसाब से शब्द नापे तुले बोले, आवश्यक बोले। अब हम कर्म और शब्द में कैसे बैलेंस करना है वो एग्जाम्पल देखेंगे। हम एक एग्जाम्पल परिवार के हिसाब से देंगे, कर्म और शब्द। बहनें इस बात को ध्यान से सुने, हमने चार एग्जाम्पल भाइयों की दुकान के दिए। ये एक हमारे फैमिली लाइफ का है, आप भाई हैं या बहन हैं। मान लो कि एक बहन जी हैं, वो अपने परिवार और कार्य के प्रति बहुत ही समर्पित गृहिणी हैं, परंतु ऐसा देखा गया कि उसके परिवार के सदस्य तथा अन्य संबंधी उनसे तनाव महसूस करते। वो बहुत ही दिल से घर को संभालती हैं, पूरा काम करती हैं, हर एक को सब कुछ सुविधाएं देती है, तैयारी करके देती है, बहुत ही वो समर्पित गृहिणी है अपने परिवार के प्रति, अपने कार्य के प्रति। लेकिन फिर भी उसके जो परिवार के सदस्य हैं वो उनसे टेंशन अनुभव करते हैं, क्योंकि वो हमेशा ऐसे कहती रहती है काम करेंगी सब कुछ, लेकिन साथ साथ मना बोलती भी रहेगी कि देखा दूध वाला आया नहीं, सारा काम बाकी है, और नौकर भी आलसी है, किसी को कुछ पड़ी नहीं है, मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। इस प्रकार से वो कहती रहती है, तो उसे सफलता पाने के लिए उसके कारण वो प्रिय नहीं लगेगी। काम सारा कर रही है, टाइम बहुत दे रही है, घर के और परिवार के लिए ही जैसे कि वो है, लेकिन साथ साथ वो बोलती भी बहुत है कि भाई मैं ही सब करती हूँ, कोई देखता ही नहीं है, देखा ये चीज नहीं आई, नौकर नहीं आए, इतने काम पड़े हुए हैं। तो उसे अपने कर्म और शब्द में कौन सा संतुलन लाने की आवश्यकता है? घर अपना है, कार्य अपना है, इसलिए वो करना है और वो कर रही है, लेकिन क्या बैलेंस लाएं शब्द के हिसाब से? तो यहां हमें अपने अंदर में कि जितना हम अपने कर्म में रेस्पॉन्सिबल है, उस बहन में रेस्पॉन्सिबिलिटी का गुण है, इसलिए वो पूरा टाइम दे रही है, घर और परिवार को ही देख रही है, सारे काम निपटा रही है, लेकिन शब्दों में जो हमें केयरफ्री निश्चिंत होकर के जो करना चाहिए कि जब मुझे करना ही है तो मैं निश्चिंत रहूं, बार बार उन कामों का वर्णन करना, सुनाते रहना और लोगों को भी भारी करते जाना, इसका तो कोई मीनिंग नहीं है। जब मुझे करना है और मैं ही करती हूं तो मुझे मन से निश्चिंत रहना चाहिए, अपने शब्दों में निश्चिंतता बतानी चाहिए कि हाँ हो जाएगा, वो भी आ जाएगा, सब मिलके हम कर लेंगे, है ना? तो हम जवाबदारी लेते हैं और काम भी करते हैं, लेकिन करते हुए शब्दों में ऐसा वातावरण बना देते हैं कि दूसरों को चिंता हो जाए, टेंशन हो जाए। तो हमें बैलेंस लाना होगा कर्म में रेस्पॉन्सिबिलिटी और शब्द में निश्चिंतता मीन्स केयरफ्री, बेफिकर, केयरलेस नहीं, केयरलेस मीन्स अलबेला, लापरवाह वो नहीं, केयर फ्री मीन्स बेफिकर, है ना? सतत खुद को ही फिकर रहे और हम बताते भी रहे, करते भी जाएं और बोलते भी जाएं, तो दूसरे भी टेंशन में आ जाएंगे। इसलिए शब्द में निश्चिंतता कि नहीं हो जाएगा, सब टाइम पर हो जाएगा, वो भी आ जाएगा, आता ही होगा करके हम निश्चिंतता के गुण को भी लाएं जीवन में, तो हमें सक्सेस मिलेगी। हमारा इतना टाइम देना और इतना काम करना सफल होगा और हमें प्रिय बनाएगा। और लास्ट में एक एग्जांपल देना चाहूंगी, समय और विचार, थॉट्स, समय और विचार के हिसाब से यहां एक एग्जांपल दिया है कि सरोज बहन ने अपने जीवन में ये संकल्प किया है कि हम वो सभी की सहायता करेगी और वो कभी भी किसी को भी किसी कार्य के लिए ना नहीं कहती है। ऐसे अनेक लोग होते हैं अपने जीवन में, ऐसा उनका नेचर होता है कि वो हर एक की सहायता करेगी और कभी किसी को ना नहीं कहती है और सभी उससे प्रसन्न है, लेकिन फिर भी वो अपने को इतना सफल नहीं समझती है और कभी कभी अपने को बहुत उदास महसूस करती। सभी का काम भी करके देती है, मदद भी करती है, ना भी नहीं करती है, तो उससे क्योंकि टाइम तो बहुत वो दे रही है, तो समय और विचार दोनों शक्तियों का संतुलन कैसे करना होगा ताकि वो इतना करने पर खुद भी तो खुश रहे, प्रसन्न रहे। तो उसके लिए हमें जीवन में जरूरी है कि समय का प्रयोग करने में हम फर्म रहे, लेकिन अपने विचारों में हम फ्लेक्सिबल रहे, है ना। विचारों में भी हम टाइट हो जाते हैं, टाइम के हिसाब से तो हम फर्मनेस हैं, हाँ, हमारे में ये दृढ़ता है कि हम ना नहीं कहेंगे, हम सबका काम करके देंगे, मदद करेंगे, उस हिसाब से हम अपनी शक्ति समय लगा रहे हैं, वो फर्मनेस है हमारे में, लेकिन मेंटली हम फ्लेक्सिबल नहीं हैं, क्योंकि भात भात के लोग हैं, भात भात की सिचुएशन है। तो अगर मेंटली हम टाइट रहेंगे तो हम खुद ही दुखी होंगे, उदास होंगे। इसलिए विचारों में फ्लेक्सिबल रहे, टाइम के हिसाब से आप फर्म रहे, तो हम अपने में सफलता का अनुभव करेंगे। तो ये हैं कुछ एग्जांपल्स, इसी रीति से आप अपने लाइफ में भी थोड़ा और गहराई से देख लीजिए कि आपको कहां बैलेंस लाने की जरूरत है। जैसे कहते ना भाई सेवा भाव रखो, तो सेवा भाव हम रखते हैं, लेकिन सेवा के साथ साथ विवेक भी चाहिए कि अगर हमारा सेवा देना, सहयोग देना वेस्ट हो रहा है, ठीक से यूज नहीं हो रहा है, तो वहां हमें वो विवेक का बैलेंस करना होगा कि हमें कहां कितना किस हिसाब से करना है। कई बार जीवन में आप सोचते हैं कि भाई हम ही सबसे एडजस्ट करते रहते हैं, तो आखिर हम कहां तक एडजस्ट करें, हम तो खत्म ही हो जाएंगे, हमारे जीवन का तो कोई स्वरूप ही नहीं रहेगा। इनसे एडजस्ट करो, घर में एडजस्ट करो, बाहर एडजस्ट करो, अपने कार्य क्षेत्र में एडजस्ट करो, तो वहां फिर हमारे अंदर बैलेंस चाहिए कि हमें कहां तक किसके साथ कितना एडजस्ट करना है, कहां हमें टॉलरेट करना है और कहां हमें फेस करना है, सामना करना है, उसकी परख शक्ति, विवेक शक्ति हमारे अंदर चाहिए। तो ये बैलेंस हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कार्यक्षेत्र के जीवन में जरूरी है। इतिहास में भी आपने पढ़ा होगा, भारत का इतिहास, कि भारत देश शुरू से नैतिक रहा है, यहाँ हरेक के आचरण में वैल्यूज रही है, लेकिन वैल्यूज होते हुए भी हमें इतिहास हमें क्या बताता है कि हम धोखा ही खाते रहे और जो और जाति प्रजाति और देश के लोगों ने यहाँ आक्रमण किए उसमें हमने क्यों धोखा खाया और गुलामी की स्थिति क्यों आई। पोरस और सिकंदर के इतिहास को आप पढ़ना कि सिकंदर की जो सेक्रेटरी थी वो कैसे इस तरफ पोरस के साइड युद्ध में, पोरस के जो सेना है वो उसको बंदी करके ले आते हैं और भारत के डिसिप्लिन की भी नारी की रक्षा करनी है उसको बहन समझ करके पोरस अपने पास रखता है, लेकिन वही बहन उनके पास रहकर सारी बातें जानकर फिर सिकंदर को बता देती है और उस रीति से सिकंदर अटैक करता है और पोरस हार जाता है। तो यहाँ क्या लैक, क्या कमी रही कि हमने नैतिकता अपनाई, उससे प्यार से व्यवहार किया लेकिन साथ साथ हमने सावधानी नहीं रखी, खबरदारी नहीं रखी, सतर्कता नहीं रखी, इसलिए हम धोखा खा गए और गुलाम बन गए। तो जीवन में आप देखिए व्यक्तिगत, आप हर एक अपने आप को चेक कर लीजिए कि कहां हमें बैलेंस लाना है ताकि हमें सफलता मिले। जैसे आपने वो एग्जाम्पल सुना होगा कि वो बंदर को सिखाया था कि वो मालिक की सेवा करे और मालिक सो रहा था तो मक्खियां बार बार उस मालिक पर बैठ रही थी और वो बंदर उसकी रक्षा के लिए था तो उसने मालिक की रक्षा की, भी वो मक्खी नहीं बैठनी चाहिए इसलिए उसने उठाकर पत्थर मारा कि मक्खी उड़ जाए, लेकिन भाव सेवा का, लेकिन विवेक चाहिए कि हमें कहां किस रीति से चलना है। तो वैल्यूज होते हुए, सब कुछ सबका करते हुए भी सक्सेस नहीं मिलता है, उसका कारण ये है कि बैलेंस नहीं है, है ना। कभी कभी हम ज्यादा सोचते ही रहते हैं और समय पर जो हमें शब्दों से बताना चाहिए मन की बातें वो हम नहीं बता पाते, इसलिए मेंटल लेवल पर सोचते ही रहते हैं, मन में बहुत बात है लेकिन शब्दों में हम पावरफुल नहीं है, ठीक से वर्णन नहीं कर पाते हैं, इसलिए सफलता नहीं मिलती। कई बार कहां हमें साइलेंस में रहना चाहिए वहां हम ज्यादा बोल बोल करते हैं, इसलिए मिलनसार हम हैं, हम सबसे मिलते हैं बोलते हैं लेकिन हम अपने पर कंट्रोल नहीं रखते हैं, कहां कहां हम साइलेंस में नहीं रहते हैं, नहीं बोलना चाहिए वहां भी बोल देते हैं इसलिए फिर हम अप्रिय हो जाते हैं। कहां हमें बोलना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, योग्य प्रसंग पर हमें उसको मुबारक देना चाहिए, महिमा करनी चाहिए, वहां हम बोलेंगे ही नहीं, शब्दों में मनहूस हो जाते हैं, है ना, महिमा नहीं कर पाते हैं, प्रशंसा नहीं कर पाते हैं, तो भी हम प्रिय नहीं लगेंगे। तो ये सारे प्रसंग आप जीवन के देखिए कि ये सारा इम्बैलेंस है हमारी पर्सनालिटी में और इसलिए हमें सफलता नहीं मिलती है। तो जैसे जैसे, क्योंकि मेडिटेशन जो है राजयोग हमारी बहुत बैलेंस पर्सनालिटी को डेवलप करता है, इससे हमारा लॉजिकल साइड भी डेवलप होता है, इमोशनल साइड भी डेवलप होता है, इसलिए विवेक और भावना, विवेक और गुण, बुद्धि और गुण दोनों का बैलेंस हमारी पर्सनालिटी में आता जाता है और हम अपने को परफेक्शन की ओर ले जा सकते हैं, सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं ये बताऊंगी कि जब वो बैलेंस हमारे लाइफ में आता है, क्योंकि ये बैलेंस आप करेंगे तब आपके विचार कर्म वाणी जमा होंगे और आपका टाइम भी सफल होगा। तो जब जमा होगा सत्कर्मों का खाता, श्रेष्ठ विचारों का खाता, समर्थ शब्दों का खाता, जब पॉजिटिव हमारे शब्द विचार कर्म होते जाएंगे और हमारा खाता भरपूर होता जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा? कि आप ऐसे एम्पावर्ड, शक्तिशाली, सशक्त आत्मा बन जाएंगे और आपके विचारों में सकारात्मकता आ जाएगी, आपके शब्द समर्थ होंगे। मैं इतना बोल बोल करती हूं और वो मानते नहीं है, मीन्स हमारे शब्दों में ताकत नहीं है, इसलिए हमारा बोलना सफल नहीं हो रहा है, क्योंकि इम्बैलेंस कि हम बोल बोल करते हैं लेकिन प्रैक्टिकली जहां हमें डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, वहां हम लॉफुल नहीं है। तो जब आपका जमा होगा, खाता भरपूर अंदर से होता जाएगा तो ये रिजल्ट आएगा, आपके विचार सकारात्मक, शब्द समर्थ, कर्म आपके परोपकारी, बेनिफिशियल, दूसरों का और खुद का कल्याण करने वाले कर्म, और समय आपका रचनात्मक, क्रिएटिव बनता जाएगा। तो नेचुरली अपने लाइफ के अंदर हम स्वयं को सफल महसूस करेंगे, और ऐसी पर्सनालिटी के साथ फिर आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, संसार के क्षेत्र में जाइए, व्यवहार के क्षेत्र में जाइए, व्यवसाय के क्षेत्र में जाइए, या आध्यात्मिक सेवा के क्षेत्र में जाइए, जब पर्सनालिटी आपकी पावरफुल एंड बैलेंस्ड है तो आप जहां जाएंगे और जहां रहेंगे वहां सफल होंगे। नॉट नेसेसरी कि यहां रहेंगे तो होगा, नहीं, यहां रहो चाहे कहीं दुनिया में रहो, हम सफल हो सकेंगे, अपने में सेटिस्फेक्शन का अनुभव करेंगे। और उसके लिए जरूरी है कि वो बैलेंस आपके लाइफ में आवे। बैलेंस लाना एक आर्ट है ना, वो आर्ट आप में लाने के लिए क्या चाहिए, है ना? हर कोई ये चाहते हैं और आप भी समझ रहे होंगे कि हाँ, हमें कहाँ कहाँ बैलेंस लाना है। उसके लिए जरूरी है सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। हर इंसान को अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो, अभिमान, उसके बीच में जो भेद रेखा है वो हमें समझनी होगी। कई बार होता अभिमान है और हम कहते हैं आखिर हमें भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वास्तव में वो ईगो होता है। तो आत्मसम्मान और ईगो के बीच में क्या डिमार्केशन लाइन है? तो अभिमान की निशानी दो है, आप में ईगो होगा तो आप दूसरों का अपमान करते रहेंगे, आपके व्यवहार में, शब्दों में ऐसा आएगा कि दूसरों का आप इंसल्ट करेंगे, उसको आप हीन, हेय नजर से देखें। और दूसरा, जो इगोइस्टिक होते हैं वो खुद भी बहुत सामान्य बात में खुद का अपमान भी महसूस करें, क्या समझता है वो, मीन्स ईगो है, वो हर्ट होंगे अंदर से बार बार, वो क्या समझता है ऐसे कैसे मेरे साथ बोल सकता है, मीन्स मैं समथिंग हूं, ये मेरी बुद्धि में है, है ना? तो अभिमान की ये निशानी है कि वो खुद को भी छोटी छोटी बात में बहुत जल्दी अपमानित महसूस करेगा, और दूसरा कि वो दूसरों को भी अपमानित करता रहेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट उसको कहते हैं कि वो स्वयं भी अपनी ऊंचाई में रहेगा और दूसरों को भी वो सम्मान देगा। जो स्वयं सेल्फ रिस्पेक्ट में रहता है वो दूसरों को भी रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि वो अपनी उस ऊंचाई में है कि उनके शब्द, उनका व्यवहार नीचा, हल्का हो ही नहीं सकता है, चाहे कोई कैसा भी व्यवहार कर, क्योंकि उसकी ऊंचाई परमानेंट है, टेम्पररी नहीं। तो यहां जो सोल कॉन्शियस बनने का हम अभ्यास कराते हैं उससे हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप होता है, जो हमारा रियल है कि मैं कौन हूं, किसकी संतान हूं और मैं किस कार्य के लिए इस दुनिया में आई हूं। जैसे हमें अपनी जाति का, कुल का, प्रोफेशन का अभिमान होता है, जिसको अब तक हम ये समझ रहे हैं कि हमें भी तो सम्मान है, हम भी राजपूत हैं, हम भी फलाने हैं, है ना? वो देह के जाति, कुल, पद, प्रतिष्ठा का अभिमान होता है। ये रियल होगा, ओरिजिनल, कि मैं कौन हूं, आत्मा हूं, ईश्वर की संतान, और मैं इस दुनिया में किस लिए आई हूं, भगवान की एक प्रतिनिधि बनकर आई हूं, मुझे सुख देना है, सुख लेना है, दुआएं देनी है, दुआएं लेना है। तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट में जितने आप स्थित होते जाएंगे, नेचुरली आपकी पर्सनालिटी में बैलेंस आएगा। यहां वही बताया है कि आपने ऐसा नट देखा होगा जो रस्सी पर चलता है ना, बिना सहार। अब ये कला है, हर कोई नहीं चल सकता है। उसमें वो कला है कि वो बिना सहारे रस्सी के ऊपर बैलेंस बनाकर के वो चलता है। तो अपने आप में वो यूनिकनेस है, विशिष्टता मीन्स यूनिकनेस है, अनोखापन हर कोई नहीं कर सकता है। लेकिन उसके लिए वो क्यों कर सकता है, दो चीज है उसके अंदर। एक तो टैक्ट है, उसके अंदर वो टैक्ट है, टैक्ट मीन्स वो युक्ति, वो मेथड है, वो विधि उसके पास है। और दूसरा सिंसियरिटी है, तब वो बैलेंस से चल सकता है। अगर सिंसियरिटी ना हो और उसके पास वो टैक्ट ना हो तो वो नहीं कर सकता है। इस प्रकार हमारे अंदर भी जब हम सोल कॉन्शियस बनते हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट में रहते हैं तो हमारे अंदर वो टैक्ट आती है कि हमें किसके साथ, कहां, किस विधि से चलना है। और वो सिंसियरिटी, निष्ठा के साथ हम चलेंगे, उसको अपने आप में भी कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकूंगा। और जब स्वयं में कॉन्फिडेंस है तो हमें दूसरों में भी विश्वास आएगा कि वो जरूर एप्रिशिएट करेंगे। तो जैसे जैसे आप अपनी पर्सनालिटी में सोल कॉन्शियस बनकर सेल्फ रिस्पेक्ट में स्थित होते हुए बैलेंस लाते जाएंगे तो आपकी पर्सनालिटी विशिष्ट बनेगी, आप में निष्ठा आएगी, तो नेचुरली आप व्यक्ति को, वस्तु को धोखा नहीं देंगे और आप में वो विधि आएंगी कि आप कैसी भी परिस्थिति में, कैसी भी व्यक्तियों के साथ बहुत सक्सेसफुली आप चल सकेंगे। एक मिनट, तो आप ऑन ही रख, आप चाहेंगे हरेक के हम ऐसा अपने में लाएं, क्या विचार है? क्या विचार है? हाथ ऊपर करो जो समझते हैं कि हाँ इस प्रकार से हमें करना चाहिए अपनी पर्सनालिटी में, अपने कार्य क्षेत्र में। बहुत अच्छा। तो हमें तीन चीज करनी होंगी, क्योंकि ये चीजें ऐसा नहीं है जादू की तरह कोई बाबा की कृपा से हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि वो तो कृपालु है ही, दयालु है ही, कोई कृपा और आशीर्वाद करने की और नई बात नहीं है, उनकी तो कृपा है ही। लेकिन वो हमें ऐसा ज्ञान देते हैं, जब हम हिम्मत करते हैं उसके कहे हुए रास्ते पर चलने की, तो वो हमें अनेक गुना ऐसी मदद करते हैं। लेकिन करना तो हमें ही है, इसलिए हम अपनी पर्सनालिटी में ये चेंज तभी ला सकेंगे। सिर्फ यहां आपने सुना और यहां से गए, इससे नहीं हो जाएगा। आपको तीन बात अपने में लानी होगी। एक तो सबसे पहले लक्ष्य, आपका अपना लक्ष्य हो कि मुझे करना है। अक्सर जब परिवर्तन करने की बात आती है तो लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि परिवर्तन लाना मीन्स कुछ नया सीखना, कुछ अपने को बदलना, कुछ समाना, कुछ भूलना, कुछ सहन करना। परिवर्तन की प्रक्रिया कष्टदायी होती है, इसलिए अक्सर लोग ये सोच लेते हैं कि चलो भाई जैसे चलते हैं ऐसे ही ठीक है ना, नया अब कहां सीखे इस आयु में, है ना, ऐसे सोच लेते हैं। लेकिन नहीं, ये मुश्किल चीज नहीं। अगर हम लक्ष्य रखते हैं तो हम कर सकते हैं, जिसको हम सभी कहते हैं कि जहां चाह है वहां राह है ना। अगर हम करना चाहें तो दुनिया में कोई हमें नहीं रोक सकता है, है ना। इसलिए आपको खुद वो लक्ष्य बनाना होगा कि मुझे करना ही है, ताकि मुझे खुद को भी सेटिस्फेक्शन रहे जीवन में कि हम अच्छी रीति से जीवन में आगे बढ़े हैं, दूसरों को भी सुख दिया है, न्याय दिया है, हमारे अपने कर्मों का हिसाब भी सही रहा है। तो आप लक्ष्य बनाएंगे तो होगा, है ना, हम चाहेंगे तो होगा, ऐसे ही कोई जादू से नहीं हो जाएगा। दूसरा, इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट रखना होगा, रुचि लेनी होगी। आपने देखा होगा जिसमें आपको रुचि है, इंटरेस्ट है, उसके लिए टाइम भी मिल जाता है, पैसे भी मिल जाते हैं, कंपनी भी मिल जाती है ना। आपको फिल्म देखने जाना है, टाइम भी मिल जाएगा, पैसे भी मिल जाएंगे, और कहीं कुछ अच्छा काम करना होगा, दान पुण्य करना होगा तो कहेंगे आजकल बहुत तंगी चल रही, और खुद को जहां खर्च इंटरेस्ट है तो वहां आप खर्च कर देंगे, क्योंकि आपको खुद को रुचि है। टाइम भी मिलेगा, मनी भी मिलेंगे, और लोग भी मिल जाएंगे, साथी भी मिल जाएंगे। यहां हम कहेंगे आप आइए भाईसाहब योग करिए, कहते मैं अकेला, और कोई आने ही तैयार, मेरा फैमिली वाले कोई आना ही नहीं चाहते, मेरे फ्रेंड सारे ही कहते नहीं ज्यादा, है ना। गलत करने में साथी मिल सकते हैं तो अच्छा करने में भी तो मिलेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। इसलिए रुचि है तो सब सोर्स मिल जाएंगे। और तीसरा, कि आपने लक्ष्य बनाया, आप रुचि पूर्वक करना शुरू भी करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते रहना होगा, अभ्यास चाहिए। हम अनेक जन्मों से बॉडी कॉन्शियस रहे हैं, और बॉडी कॉन्शियस होने के कारण ही नेगेटिव थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस करते रहे हैं। तो नेचुरली आप अपनी पर्सनालिटी, लाइफस्टाइल को चेंज करने में हमें तुरंत सक्सेस नहीं मिलेगा, हमें अभ्यास करना होगा। जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे, हम अनुभव करते जाएंगे कि हम इस दुनिया में रहते हुए, जिम्मेवारियों के बीच रहते हुए, रिलेशंस के बीच रहते हुए भी हम महान श्रेष्ठ बन सकते हैं। इसलिए ये कंसेप्ट बुद्धि से आप निकाल दे कि भाई जो घर बार छोड़े, संन्यास ले, भगवा पहने, सफेद पहने, वो ही महान बन सकते, ऐसा नहीं है। घर बार संबंध जिम्मेवारियां कोई डिस्टर्ब नहीं करती है, हमारे में वो ज्ञान नहीं है, वो कला नहीं है, करने की विधि नहीं है, इसलिए ये सब चीजें हमें बंधन करने वाली महसूस होती है। वरना ये सब कुछ करते हुए भी आप व्यवहार में भी सफल और परमार्थ में भी सफल हो सकते हैं। तो रिजल्ट आएगा आत्मसम्मान, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट इतना जागृत होगा कि कोई आपको मिसगाइड नहीं कर सकता, कोई आपसे गलत नहीं करा सकता, कहीं आप दब नहीं सकते हैं, कहीं आप प्रेशर में नहीं आ सकते हैं, आप बहुत ही सफल होकर चल सकते हैं। ओम शांति। सत्र हम समाप्त करेंगे 2 मिनट बाबा की याद के साथ। आज मैं सिर्फ साइलेंस नहीं कहूंगी, साइलेंस में रहकर हमें क्या करना है वो आप जान चुके हैं। पहला अभ्यास सोल कॉन्शियस बनने का, बार बार वो चिंतन में लाना कि मैं आत्मा हूं, ईश्वरीय संतान हूं। और आज मॉर्निंग में जो राजयोग सत्र आपका चला है, आपने उस परम शक्ति परमात्मा पिता जिसको हम शिव बाबा कहते हैं, जो हम सभी आत्माओं का पिता है, जो पिताओं का पिता है, धर्म पिताओं का पिता है, प्रजा पिता का भी परम पिता है, उस ज्योति बिंदु शिव पिता जिसकी याद हमें एम्पावर करती है, पॉजिटिव बनाती है। तो 2 मिनट साइलेंस में बैठकर हम शिव बाबा को याद करेंगे और फिर ये सत्र समाप्त होगा। शाम को 4:30 बजे आपका लास्ट सेशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्ट ऑफ बिजनेस, ताकि वो कला आप सीख कर जाएं और अपने मास्टर ऑफ ट्रेड बन जाएं, वो आपका इस SOW का सेशन होगा।
सभी इसमें शामिल हो जाए, विश्व बनाएंगे।